अल्लाह ताला ने इसका क्या जवाब दिया है? बला मन औफा बि अहदिही वत्तका फइन्ना अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। बल्कि क्यों नहीं, मन औफा जिसने पूरा किया बि अहदिही अपने अहद को, वत्तका और डर के रहा अल्लाह से। तो अल्लाह ताला मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। अहद कौन सा अहद? अहद अलस्त भी है, आपको पता है ये भी अहद है जो हमने कलमा पढ़ के अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी के इताअत का हमने एक अहद किया हुआ। लेकिन यहाँ पे कौन सा अहद है जो पूरा करता है अहद को? आप कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, अगर कॉन्टेक्स्ट देखें क्या बात चल रही है पीछे से, आम अहद की बात नहीं हो रही है। यानी ये अहद है कि जो भी कवानीन है किसी भी जगह में आप रहते हैं उन पे भी आप वहां पे कोई अहद करते हैं, उनकी पाबंदी जरूरी है। ठीक है, वैसे तो ये भी अहद है कि अहले किताब से ये अहद हुआ हुआ था कि जो भी नबी आएंगे आपने उनकी माननी है, ईमान लाना है उनको उनके ऊपर, तो ये भी एक अहद था। अगर आप ये देख लें ना कि पीछे से क्या बात आ रही, पीछे से अमानतों की बात आ रही, एक ऐसी जगह पे रहने के रूल्स की बात आ रही। अगर हर बंदा ये कहने लगे कि मैंने नहीं मानना क्योंकि हुक्मरान करप्ट है, मैंने नहीं मानना क्योंकि ये हुकूमत काफिर है, मैंने नहीं मानना क्योंकि ये फलाने ऐसे हैं, ये खुद भी तो बेईमानी करते हैं, तो फिर मुल्क का क्या हाल होगा? फसाद पैदा हो जाएगा। लिहाजा जहां पर भी आप रहते हैं, जिस खित्ते में भी दुनिया के रहते हैं, वहां पे जो भी इंतजामी कवानीन है उनकी पाबंदी जरूरी है, जरूरी है उनकी पाबंदी, चाहे हुक्मरान कैसे भी हैं। और इसमें तमाम ही अहद आ गए। जिस माशरे में आप रह रहे हैं, जिस जगह पे आप हैं, जिसके आप सिटीजन हैं, आप देखें आप इस मुल्क में आए, आपने ओथ लिया है, ओथ हलफ उठाया है कि मैं यहाँ पे कानून की पाबंदी करूंगी, मैं एक पीसफुल सिटीजन की तरह रहूंगी, और उसके बाद कुछ भी नहीं। क्या ये अहद नहीं है? या जिस मुल्क के भी आप सिटीजन है वहां आप एक आपकी पाबंदी है उनके साथ, एक अहद है, खामोश अहद है कि मैं यहाँ की सिटीजन हूं तो मैं यहाँ की पाबंदी करूंगी। अब कितने भी हुक्मरान फिस्को फजूर में मुबतला, ये उनके जिम्मे है, लेकिन हर कोई नहीं उठ के कह सकता नहीं जी मैंने तो नहीं पाबंदी करनी। उसके ऊपर कहा गया नहीं किसी ने बाहर निकलना, हमने तो नहीं मानना, इसलिए नहीं हमने मानना, ये तो हमारी पार्टी के थोड़ी हैं लोग जो हुकूमत में हैं, या हम नहीं बस मानेंगे, बस एक बगावत का वो एटीट्यूड, नहीं ये नहीं सही है। हाँ कोई हुकूमत कोई जगह में ऐसा कानून है जो अल्लाह ताला या उसके रसूल की नाफरमानी पे मबनी है, तो फिर तो जाहिर है अल्लाह ताला की जात उसका उसके कवानीन उसकी बात सुपरसीड करेगी हर एक को। मैंने पिछली दफे भी आपको हदीस बताई थी, ला ताता ली मखलूक फी मासियत अल्लाह, कि किसी मखलूक की इताअत है ही नहीं, किसी मखलूक की भी नहीं, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे माँ बाप है, चाहे कानून है मुल्क का, चाहे कोई मर्जी भी है, अल्लाह की नाफरमानी जहां पे हो रही होगी वहां पे उसकी मखलूक क्या अल्लाह से भी बढ़ जाएगी आगे? क्या हम उनकी माननी शुरू हो जाए तो अल्लाह को पीछे कर दें? खालिक की नहीं मान रहे, मखलूक की मान रहे। तो लेकिन अदरवाइज रहन सहन के एतबार से जो भी उन्होंने अपने मुल्क का कानून के मुताबिक एक इंतजाम चलाना है, उसकी उन्होंने टैक्स भी लोगों से लेने हैं, उन्होंने लोगों से और भी कोई जो भी चीजें वो करनी है, तो वो तो फिर उनकी पाबंदी जरूरी है। एक हदीस में आता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इताते अमीर का भी हुक्म दिया कि जो भी तुम्हारा हुक्मरान है, जो भी तुम्हारा इंचार्ज है, उसकी बात को मानना, चाहे वो हबशी गुलाम ही हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि माशरे का अमनो अमान खत्म हो जाएगा अगर हर कोई अपनी मर्जियां करने लगेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो लोगो, अल्लाह से डरो, यानी तकवा इख्तियार करने का मतलब क्या है, कोई ऐसा काम ना करो कि जिसमें अल्लाह की नाराजगी हो, ये तकवा होता है, नाराजगी के काम से बचना और अल्लाह की रजा का काम करना, और 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, और जो साहिब-ए-निसाब है वो उसी से जकात अदा करें, और जो तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बनाएंगे उनकी इताअत करो, अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो इसके अंदर साफ तौर पे बताया गया है कि ये जो हम अपने एक खुद ही बना लेते हैं ना कि हमने हमारी मर्जी, अब हमने ऐसे करना है या हमने ये नहीं करना या हमने ये नहीं मानना, ये नहीं हो सकता। ये भी अहद है और इनको भी पूरा करना है। तकवा अल्लाह को पसंद है, मुत्तकी लोग पसंद है, लेकिन इन्नल्लदीन यश्तरून बिअहदिल्लाही व अईमानिहिम, वो लोग जो लेते हैं अपने अहदों के बदले में और अपनी कस्मों के बदले में, क्या लेते हैं? समनन कलीला, थोड़ी कीमत, थोड़ी कीमत पे अपने अहद बेच देते हैं, थोड़ी कीमत पे अपनी कस्मों को बेच देते हैं, यानी थोड़े से मफादात के लिए। और अहद में देखिए, आप ये भी ले सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने का अहद था, लेकिन इन्होंने बेच दिया उसको। कैसे बेच दिया? सिर्फ इसलिए कि हमारी इज्जतें रहे, हमारे ओहदे रहे, हमारी पोजीशंस रहे, हमारी लीडरी ना चली जाए। ये थोड़ी कीमत है ना, दुनिया का सारा माल भी मिल जाए तो ये थोड़ी कीमत है आखरत के मुकाबले में। और अपनी कस्मों को पसे पोछ डाल दिया। कस्में भी कैसे बेच देते थे? तो अपने फायदे के लिए झूठ बोल दिया। आप देखें, ये जो अमानतदारी के अंदर जो अमानतदारी आज नहीं नजर आती, और सिर्फ अपने फायदे की खातिर कस्में खा खा के दूसरों को लूट लेते हैं, ये कसम तोड़ना है। और यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में देखें आप, ये सारी बेईमानी जो माल के ऊपर आ रही है कि खजाने भी हों तो कुछ तो दे देते हैं और कुछ इतनी सी चीज भी नहीं देते, और हड़प कर जाते हैं। और ये कह देते हैं आगे से, नहीं, हमारे तो इजाजत है, हमें तो कोई नहीं इसके ऊपर पूछो नहीं, ये झूठ है अल्लाह के ऊपर। तो जो बेचते हैं इस तरह अल्लाह के अहद को, ठीक है, हकीर सी कीमत पे और अपनी कसम, हकीर सी चीज के ऊपर कसम को तोड़ दिया, उनके लिए क्या है? उनके लिए आखरत में कोई हिस्सा ही नहीं है। कोई हिस्सा नहीं का मतलब क्या है? यानी आखरत में फिर उनको एक्सपेक्ट ना वो करें कि उनको वहां पे कोई खैर मिलेगी, कुछ नहीं उनके लिए वहां। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे कलाम भी नहीं करेगा। वला यंदुरु इलैहिम यौमल कियामती, कलाम करना तो दूर की बात, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। वला युजक्कीहिम, और उनको पाक नहीं करेगा। किस चीज से नहीं पाक करेगा? गुनाहों से, क्योंकि जिसको अल्लाह गुनाहों से पाक कर देगा उस दिन वही जन्नत में जा सकता है। गुनाहों को लेके तो नहीं चला जाएगा ना जन्नत में, अल्लाह पाक करेगा। जो जिसको अल्लाह पाक कर दे वही पाक है। अपने कहने से हम पाक नहीं हो सकते कि मैं बड़ी पाक साफ और नेक बीबी हूं। अल्लाह पाक करने वाला है, तो वो अगर पाक ही नहीं करेगा तो फिर क्या होगा इनका? वला हम आदाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यहाँ पे इन लोगों के लिए कहा गया, देखिए इसके अंदर एक इसके शाने नजूल में भी एक वाक्य आता है। शाश बिन कैस का झगड़ा था जमीन के कब्जे के बारे में एक यहूदी के साथ, और ये केस नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। आपने अशहश से पूछा, बताओ तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये तुम्हारी जमीन है? अब सबूत उसको लाना होता है जो दावा करता है कि मेरी मेरा है, मुद्दई जो है ना उसको सबूत लाना होता है, ये कानून है। और ना वो ला सके तो मुद्दा आले जो है, जिसको जिससे वो कह रहा है कि डिमांड कर रहा है कि ये मेरी जमीन है इसे मुझे दिलाओ, वो मुद्दा आले है ना, वो डिफेंडेंट जो है वो कसम खाएगा फिर कि ये मेरी चीज है। तो अब आप सल्लल्लाहु ने पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? ये सहाबी रसूल है। उन्होंने कहा, नहीं मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है। तो फिर आपने फरमाया कि फिर अब वो यहूदी कसम खाएगा, तो वो फरमाने लगे, या रसूल्ला वो तो झूठी भी कसम खा लेगा, जो उसको क्या है, वो तो खा लेगा झूठी कसम और हड़प कर लेगा मेरा माल, मेरी जमीन हथिया लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा इंसान अगर झूठी कसम उठा लेता और अपनी कसम की बुनियाद पे कोई हक मार लेता है किसी का, तो अपनी आखरत बर्बाद कर लेता है। तो बहुत से ऐसे मामला होते हैं जिन्हें पता होता है कि दूसरा जो है वो बदनीयत है, या दूसरा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने झूठी भी कसम खा लेनी है, फिर भी प्रोसीजर को तो फॉलो करना है। कोई ये नहीं कह सकता, नहीं, आप मुझे चीज दे ही दे उसे लेके, क्योंकि वो तो झूठी कसम खा लेगा तो है ही झूठा। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने झूठी कसम खा ली फिर किसी का हक मार लिया इस तरह, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखारी में हदीस है, जो शख्स किसी का माल हथियाने के लिए झूठी कसम खाए वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उस पर गजबनाक होगा, अल्लाह का गुस्सा होगा उसके ऊपर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कितनी सारी बातें आई कि अल्लाह ताला उनसे कलाम भी नहीं करेगा, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। और आप जब किसी से बहुत सख्त नाराज होते हैं ना तो फिर आपका दिल नहीं चाहता उसकी तरफ देखने का भी, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा तक नहीं और उनको पाक भी नहीं करेगा, सीधा उनके लिए अजाब अलीम है। देखें वो चीजें अंदाजा करें जिनको कोई कुछ नहीं समझा जाता, झूठी कस्में खा के धोखा दे के किसी का माल हथिया लिया जाता है, झूठ बोल के किसी का पैसा हड़प कर लिया जाता है, ये कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा गुनाह है, छोटी बात नहीं है ये। एक और हदीस में आता है, अरे बहुत ही डरा देने वाली हदीस है जो मुस्लिम में है, मैं तो परेशान हो गई बहुत इस हदीस को भी पढ़ के, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई भी शख्स कसम के साथ यानी कसम के जरिए कसम खा के किसी को उसके हक से महरूम कर देना, अब जैसे वो किसी ने कसम खा ली कि नहीं जी मेरी जमीन है, मैं कसम खा के कहता हूँ ये मेरी ही है, दूसरा जिसकी थी उसके पास कोई सबूत नहीं है, वो तो सिर्फ दावा कर रहा है ना कि नहीं ये मेरी है, ये कह रहा नहीं मेरी है, तो अल्लाह उसके ऊपर जहन्नुम को वाजिब कर देता है और जन्नत से उसको महरूम कर देता है। ऐसा आदमी चाहे कितना ही नमाजी परहेजगार, कितना तहज्जुद गुजार, कितना मुत्तकी का रूप धारे धारे हुए है, कितना हिजाब और ये और पता नहीं क्या क्या पढ़, अगर किसी ने ऐसे कर लिया तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो सहाबी पूछते हैं या रसूल अल्लाह आपने जो ये फरमाया कि अगर कोई कसम के जरिए किसी को उसके हक से महरूम कर देता है तो उसके ऊपर जहन्नुम वाजिद हो जाती है, जन्नत हराम हो जाती है, तो अगर कोई बिल्कुल ही मामूली चीज हो यानी बहुत बड़ा माल ना हो, कोई जमीने जायदादों के झगड़े नहीं है, छोटी सी चीज ही हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी पौधे की नाजुक सी छड़ी भी हो यानी किसी की टहनी है किसी पौधे की और कसम उठा के कोई दूसरा ले जाता है तो उसके लिए यही वईद है, उसके लिए भी यही है। अल्लाह अकबर, ये माल के मामलात कितने नाजुक हैं, कितने केयरफुल होने की चीज है। यानी छोटा सा बर्तन है, छोटा सा किसी का सूट है, किसी की कोई छोटी सी चीज है, कोई पेंसिल है किसी, कोई आपको कहते हैं कसम खा के ये पेन ना मेरा ही था इसका नहीं है, यहाँ आप हथिया लेते हैं कोई झूठ बोल के कोई किसी तरह ऐसे करके, इतनी नाजुक इतनी छोटी चीज के बारे में भी ये फरमाया है, इतनी छोटी चीज कि एक टहनी भी हो तो उसके लिए भी यही वाइद है, कितनी छोटी चीज के लिए उसने अपने आप के ऊपर जहन्नुम को वाजिब कर लिया और जन्नत को हराम कर दिया। तो ये छोटी बातें हैं कोई, आज देखें विरासत में बड़ी बड़ी चीजें हड़प कर ली जाती हैं, फ्रॉड करके बड़ी बड़ी चीजें खा ली जाती हैं और पता भी नहीं चलता, ऐसे लगता है कि जैसे कुछ किया ही नहीं, फिर भी नेक है फिर भी परहेजगार है, लोगों से कर्जे लिए जाते हैं उसके बाद बिल्कुल मुकरते जाते हैं, आओ तुम्हारी इन्वेस्टमेंट करते हैं इतने पैसे लगा दो, उसके बाद कुछ पता ही नहीं ना पैसे का ना उस बंदे का। बिजनेस में लोगों को पार्टनरशिप दी जाती है और उसके बाद खा लिया जाता है उनका पैसा, इतनी तरह के फ्रॉड है, जमीनों जायदादों के तो इतने फ्रॉड है, प्लॉट खरीदा और पता चला वो तो पहले किसी का था, ये तो सारा जाली है। तो ये जो सारे कसम, जरूरी नहीं होता खड़े होके कोई कसम खाए, मैं कसम खाता हूं कि ये, वो जो आप साइन करते हैं, वो जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो जो आप कागजों पे वो करते हैं ना सारी ये अपनी यानी उसको सर्टिफाई करते हैं, आप जब सिग्नेचर करते हैं वो सारी कसम ही है, वो सारी आपने आपने इसको कहा कि मैं इसको एग्री करती हूं, आप ऑथराइज करते हैं उस चीज को, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ये सारी कस्में ये सारी चीजें, अल्लाह हू अकबर, डर लगता है कि अल्लाह हमसे हमसे तो नहीं कभी कोई ऐसी चीज हो गई, किराए पे किसी का मकान लिया और उसके बाद क्या क्या किया और उसके बाद किस तरह किराया भी नहीं दिया और चले गए वहां से, और झूठ बोल के झूठी चीजें करके झूठे पेपर्स बनवा के, चाहे हुकूमतों से लें, ये नहीं कि ये सिर्फ लोगों के साथ है,
हुकूमत से इतने पैसे आ, 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 उड़ाने शुरू कर दिए। झूठ, सब कुछ झूठ है उसके अंदर इंफॉर्मेशन। किसने बताया कि यहाँ पे लोग इस तरह से भी करते हैं कि भाई हमें पैसे मिल जाएं तो पता नहीं क्या करते हैं कि भाई अलग अलग दिखाते हैं कि चौहर बीवी से अलग हो गया हुआ है तो ये सिंगल मदर है तो इसको तो जरूरत है, हालांकि शादीशुदा ही होते हैं। पता है इतनी इतनी तरह की चीजें निकाली हुई है हमने, ऐसे ऐसे लूप होल्स निकाले हैं। अरे कहीं ना कहीं तो कानून में कुछ फ्रॉड करेंगे, कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ मिल ही जाएगा ना। तो कितने लोग होंगे जो माली मामलात में स्ट्रेट होंगे। तो अगर कोई कहे नहीं, लेकिन ये हम कौन सा मुसलमान मुल्क में रहते हैं, तो काफिरों का ही तो मुल्क है, उनकी हुकूमत है। अगर कोई ये बात कहता है तो क्या है उसके लिए जवाब है, वह यकूलूना कदिब, तुम अल्लाह पे झूठ बांधते हो, झूठ कह रहे हैं अल्लाह के ऊपर। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि हाँ तुम काफरों के मुल्क में रहते ना तो बेशक उनको लूटना, बेशक उनके साथ फ्रॉड करना, बेशक खयानतें करना, वहां पे नहीं तुमसे कोई पूछो नहीं क्योंकि तुम तो मुसलमान हो ना, वो तो काफिर है। कहां कहा है ये, किधर लिखा हुआ है कि जायज है ये? ये तो यहूदियों का काम था, हमने भी वही करना शुरू कर दिया। वो कहते थे ये उम्मी है, नहीं इनके कोई हमारी पूछ नहीं होगी, यही इस काबिल। हम भी आज यही कहते हैं, ये तो काफिर ही है, अल्लाह के दुश्मन ना। लेकिन वैसे उनकी पैरवी करना, वैसे उनके हर फैशन, हर उनके तरीके को ऑप्ट करना, उसमें नहीं हमारी कोई दुश्मनी होती। दुश्मनी सिर्फ इस मामले में है जब उनसे पैसा हथियाना होता है या फ्रॉड करने होते हैं, वैसे उनके हर तरीके को हमने फॉलो करना है, तब उनसे बहुत मोहब्बत होती है हमें। तो ये चीज को देखना कि ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसका कोई हिस्सा नहीं आखरत में, अल्लाह उससे बात भी नहीं करेगा, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, उसको पाक भी नहीं करेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है जो भी ऐसा करता है। इन लदीना, ये नहीं फरमाया जो यहूदी हैं उनके लिए ऐसा है, ये अल्लाह का यूनिवर्सल रूल है, जो भी ऐसा करेगा। अपनी अहद को, अहद कहाँ गया, कहाँ कस्में गई, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट गए, थोड़ी सी कीमत पे कि थोड़े दिन का हमें फायदा हो जाएगा, चलो जितने भी अहद हैं। और फिर कसमें तो कोई आज क्या है, एक कसम छोड़े आप 100 कसमें दिला लें कुरान पे हाथ रखा के, फर्क ही नहीं पड़ता। एक आदमी ने कहा मुझे अगर इससे मुझे फायदा होना है तो भाई आप मुझे 100 कुरानों पे हाथ रखवा लें, मैं खाने को तैयार हूं कसम। अदालतों में क्या चलता है, गवाहियों में क्या चलता है, झूठ बोल के, झूठी दस्तावेजात दे के, और क्या क्या नहीं हथिया लिया जाता। और भी कोई है जिसके बारे में ऐसी वही दी गई, सूरह बकरा में हमने पढ़ा था, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे फिर अल्लाह कलाम भी नहीं करेंगे, वो जो छुपाते हैं हक को, उनके पास इल्म होता है लेकिन उसको छुपा लेते हैं, उनके साथ भी है इसी किस्म की बात, उनके लिए भी थी। इसी तरह हदीस में कुछ लोगों के बारे में आता है जिनसे ना अल्लाह कलाम करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, ना उनको पाक करेगा। 3 किस्म के लोगों का हदीस में आता है। नंबर 1, जो अपना तहबंद टखनों से नीचे छोड़ता है, यानी मर्दों के लिए, यानी टखने को कवर करता है नीचे, और नीचे से ऊपर जुराब पहनना वो ठीक है, ऊपर से नीचे को कपड़े को छोड़ देना घर की वजह से। नंबर 2, जो एहसान जताता है, अल्लाह माफ कर दे हमें, हम तो कहीं नेकी कोई कर ही ले तो फौरन ही उस वक्त तक चैन ही नहीं आता जब तक एहसान ही ना उसके ऊपर कर दे, वो जरा सी बात तो करे हमारे सामने फौरन उसके मुंह पे दे मारते। याद नहीं उस वक्त तुम्हारे साथ क्या किया था, पता नहीं उस वक्त ये तुम किस हालत में थी, उस वक्त हम ही आए थे ना, कितने एहसान जताते हैं, किसने तुम्हारी हेल्प की थी, मैंने तो उनके साथ ऐसे किया था, मैंने ये किया था। हाय अल्लाह हू अकबर, कि अल्लाह ताला याद रखे ऐसे लोगों की तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे कलाम नहीं करेगा, उनको पाक नहीं करेगा जो एहसान जताते हैं। कौन हम में से ऐसा रह गया होगा जिसने कभी एहसान ही ना जताया, हम तो जरा सा हर्ट हो जाए ना किसी की बात से, या उसने कोई हमारी मर्जी के खिलाफ कर दिया, मैंने उसके साथ कोई नेकी की भी थी, फौरन अगली बात जो मुंह से निकलती है वो क्या निकलती, हमने तो देखे इनके साथ ये किया, इन्होंने क्या किया। मैंने तो ऐसे किया इसके साथ, मैंने तो ये किया, उसको मुंह पे ही कहते रहते हैं। और नंबर थ्री, वो जो झूठ बोल के अपना माल बेचता है, यही बात इसके अंदर आ गई, जो ये झूठी कस्में खा के या झूठ बोल के माल बेचना, नहीं जी हमारी तो कीमतें खरीद भी इतनी नहीं है। गाड़ियों के वो जो क्या होते हैं, जो माइल बताते हैं, उसको पीछे करके झूठ कहना, ये झूठी तो है ना। वो गाड़ी 1 लाख मील चली भी है, आपने उसको पीछे करके 50,000 रुपये कर दिए, अब उससे क्या होगा, गाड़ी की ज्यादा ज्यादा जाहिर कीमत मिलेगी। जो कहना नहीं तो इसमें तो कोई नुक्स ही नहीं है, तो बिल्कुल परफेक्ट है चीज, बिल्कुल अच्छी चलती है, हालांकि आपको पता है कि इसके अंदर खराबी है। झूठ बोल के अपना माल, ये चाहे कसम नहीं भी खाई है, झूठ बोल के माल बेच देता है। अल्लाह तो हमें माफ कर दे, अल्लाह तो हमें माफ कर दे, हम छोटी छोटी चीजें बेचते हैं तो उसी वक्त कितनी दफा ऐसा होता है कि हम झूठ बोल रहे होते हैं, नहीं मुझे तो फलानी तरफ से इतने पैसों की ऑफर आ रही थी। आप देखिए हमारे बाजारों में तो इतना झूठ चलता है, चाहे गाहक है चाहे दुकानदार है, गाहक भी जाके क्या कहते हैं, तो जी मुझे तो वहां से इतने की चीज मिल रही थी, नहीं मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, नहीं मेरी तो कल फ्लाइट है, मैं तो वापस जा रही हूं, तो मुझे तो आज ही ये सिला हुआ कपड़ा चाहिए, हालांकि अभी है भी नहीं फ्लाइट। इतना झूठ, और हमने तो ये चीज पहले इतने की ली थी, वो भी दूसरी तरफ से क्या कह रहा होता है, इतने की मेरी खरीद नहीं है, मैं तो सुबह से इतने की बेच रहा हूं, ये तो ऐसा कपड़ा है तो कभी धुल के भी इसका रंग ना उतरे, ये तो फलानी चीज ऐसी है, झूठ झूठ झूठ। और उसके बाद हम भी जब चीजें बेचते हैं झूठ बोलते हैं, कोई भी चीज का आप देख लें, ये भी झूठ है ना, जब नाप तोल में कमी बेशी की जाए ये झूठ है, धोखा तो है ही, झूठ भी है। ओके आपने दूसरे को बताया कि मैं आपको 2 किलो चीज दे रहा हूं, हालांकि वो 1.5 किलो, आपने पेट्रोल डाला इतना था, आपने पीछे किया हुआ उसके नंबर, आपने जो स्केल है जिसके ऊपर वजन करना है उसी को पीछे किया हुआ, आज आज इतना दुख होता है, इतना दुख है इस बात पे कि मुसलमानों जिनकी किताब में ये लिखा हुआ है और जिनके नबी ने ये फरमाया, वो दुनिया में सबसे ज्यादा बेईमानी और झूठ में मशहूर है। हम किसी गोरे के ऊपर यकीन कर लेंगे, उनकी दुकान से चीज ले लेंगे, कहेंगे ये सच बोलेगा, मुसलमान को कहेंगे ये झूठा ही होगा। इतने हम इस चीज में बढ़ गए हैं ना कि आज हम खुद, किसी और ने हमें क्या कहना है, हम आज खुद कहते हैं, हम खुद नहीं ट्रस्ट करते, हम कहते हैं ये हमें लूट ही लेगा। आप गाड़ी ठीक कराने चले जाओ, आप कहीं सौदा खरीदने चले जाओ, आप किसी घर में अपने किसी काम के लिए किसी को बुला लो, आप कोई जगह पे, आप देखो आप दुकान में किसी से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप बड़ी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप खुद देख लो, आप गैर मुल्कों में जिसमें रहते हो वहां पे कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको उसमें ज्यादा भरोसा होता है, या फिर जो आप अपने मुल्कों में कोई जमीनों जायदादों के करते हैं उसमें ज्यादा भरोसा होता है, खुद ही आप बता लें, जबकि वहां पे सब मुसलमान होते हैं। आज अपने गिरेबानों में हम झांक के तो हम क्या कर रहे हैं, उन जो गैर मुस्लिम थे उनको तो वो तरीके भी नहीं पता थे जिस तरह से हमने ट्विस्ट करके और कैसे कैसे करके उन झूठ बोल बोल के उनको क्या क्या बता के और हथियाते हैं पैसे। कई लोग जो पता चला कि वो जाके ये कहते हैं कि हम तो बिल्कुल लावारिस हैं, हमारे तो कोई है ही नहीं, सब हमें छोड़ छाड़ के चले गए, अब जो हमारे बिल हैं सारे माफ कर दो अस्पतालों के, हमारे सारे, कई औरतें हैं जो डिलीवरी कराती हैं वो कहती हैं हमारे हस्बैंड ही नहीं, हम तो अकेली हैं, अब क्या करेंगे, कहां से, हम दे ही नहीं सकते कुछ। नहीं मैं तो सिर्फ एक चंद एक चीजों का जिनका मुझे मेरे इल्म में आई उनका बता रही हूं, इसके अलावा बेशुमार चीजें हैं, बेशुमार चीजें, क्या कोई हमारे दीन की तरफ आएगा, क्या कोई हमें मानेगा कि ये सच्चे लोग हैं जो अपनी ट्रांजैक्शंस में इतना झूठ बोलते हैं, इतनी बेईमानियां करते हैं, उनके दीन को कोई कैसे अडॉप्ट करेगा, बताएं, दीन के मामले में सच बोलते हो तो बाजारों में झूठ बोलते हो, तुम तो छोटी सी सुई बराबर चीज बेचने लगते तो उसमें झूठ बोल देते हो, कौन तुम पे यकीन करेगा कि तुम बाकी जो बातें बता रहे हो वो सच है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का काम शुरू किया तो उससे पहले सादिक और अमीन कहलाते थे, सादिक और अमीन, पहले आपके कैरेक्टर को लोगों के अंदर नोन होना चाहिए कि आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं। फिर उसके बाद आप जो कोई बात करते हैं उसमें भी कोई वजन होता है। अब मेरी और आपकी बात को कोई क्या सुनेगा और क्या समझेगा जब हम दुनिया में क्या मशहूर हैं। यानी लोग डरने लगे हैं, ये इनके साथ कैसे डीलिंग करें। अल्लाह अकबर। इसी तरह जाली डिग्रियां, जाली वीजे, जाली हर चीज को जाली बनाया हुआ। ये क्या झूठ नहीं है? जालसाजी झूठ नहीं है? जाली अंगूठे लगवा लेना, जाली पेपर्स बना लेना जायदादों के, अपने नाम करा लेना चीजें। या रब, कोई जगह है जहां पे हमने ना किया हो कुछ? अपने बच्चे को किसी स्कूल में भेजना, नाम दूसरी जगह का लिखवा के और वहां से उसके स्कूल में भेज रहे। झूठ झूठ झूठ, कितना झूठ है जिंदगियों में। और फिर भी अपने आप को बिल्कुल सच्चे सवित्रे समझते हैं कि हमसे ज्यादा तो नेक पारसा ही कोई नहीं। अल्लाह तू हमें माफ कर दे। और कौन है लोग जिनसे अल्लाह नहीं कलाम करेगा क्यामत के दिन, ना उनको पाक करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। एक और भी हदीस आती है मुस्लिम में जो जो तीन किस्म के लोगों को बताती है। एक उनमें पहला बूढ़ा जानी, तो बूढ़ा भी हो गया था तूने जिना किया फिर। यानी अगर जवान करता है तो ठीक है, उसका भी बुरा है, लेकिन उस वक्त उस एज में आके जिस एज के अंदर वैसे ही इंसान की ये ख्वाहिशात कम हो जाती, उस वक्त भी वो जिना करता है, अल्लाह को उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा है कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला उसको तरफ देखेगा भी नहीं, उसे बात ही नहीं करेगा। नंबर टू, झूठा हुक्मरान। और भाई बाज लोग तो झूठ बोले, वो तो कोई कह सकते हैं हमारी ये मजबूरी है। और तुम तो हुकूमत की कुर्सी पे बैठे हुए थे जिसमें तुम्हें किसी ने नहीं पूछना था, तुम तो टॉप पे थे, तुम झूठे झूठ बोलते, तुम बोल रहे हो तो यानी उससे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। वो एक हुक्मरान है, हुक्मरान बन के भी तुमने ना झूठ छोड़ा। पूरी अथॉरिटी जब तुम्हारे पास है, अब तो कोई कह नहीं सकता मेरी क्या मजबूरी है। और तीसरा, मुतकब्बिर फकीर। यानी तकब्बुर वैसे ही बुरी चीज है, लेकिन फकीर तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं जेब देता कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं पहले ही, फिर भी तुम्हारा तकब्बुर नहीं खत्म हुआ। तो सोचो अगर तुम्हारे पास कुछ होता तो फिर क्या था। वो भी अल्लाह को सख्त नापसंद है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी नहीं तकब्बुर तुमने छोड़ा। एक के पास कोई ताकत नहीं है अब इस वक्त, उसके अंदर कोई शहवत के जज्बात नहीं रहेगा, तब भी उसने जिना नहीं छोड़ा। एक बंदा टॉप पे पहुंच गया हुकूमत के, तब भी उसने झूठ नहीं छोड़ा। तो ये अल्लाह को ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि अगर वो जवान होता फिर क्या करता, फिर तो वो तो नहीं क्या करता, अगर बूढ़ा होके वो ये कर रहा है। एक बंदा अगर वो हुक्मरान बन के नहीं झूठ छोड़ा तो वो आम आदमी होता तो क्या करता। एक बंदा फकीर है तब भी उसके अंदर से तकब्बुर नहीं गया, तो उसके पास कुछ होता तो क्या करता। तो ये हैं जो अहदीस में भी कुछ लोगों की आई हैं कि अल्लाह ताला उनके साथ नहीं बात करेगा। ये कितनी इंसान के लिए कितनी डरा देने वाली बात है कि अल्लाह कलाम ना करे। तो ये देखें, ये नमाजें रोजे हमारे ये अपनी जगह, मगर ये धरे के धरे रह गए अगर इन कामों में हम मुलव्विस हो गए। लिस्ट बनाए ये हदीस से भी और इससे भी और सूरह बकरा की आयत से भी कि कौन से वो काम है जिनके ऊपर अल्लाह नहीं कलाम करेगा, नहीं बात करेगा, ना देखेगा, ना पाक करेगा। कहीं मैं तो इनमें से किसी काम में नहीं हूं। जानते बूझते या अनजाने में, एक और जगह आता है और किसके लिए ये सजा है, एक और जगह आता है जिसके पास फालतू पानी है वो फिर भी किसी को नहीं देता। यानी आप सफर पे जा रहे हैं, आपके पास बोतल है, उसमें से खुद पानी पी लिया, नहीं अब मैं किसी को क्यों दूं, चाहे कोई प्यासा है, आगे हो सकता है मुझे ही जरूरत पड़ जाए। वो भी एक इसके अंदर है। फरमाया फिर वह इन नमिन हूं, और इनमें कुछ ऐसे लोग हैं, लफरीकून अलसिना तो हम बिल किताब, जो ना जुबानों को मरोड़ मरोड़ के किताब पढ़ते हैं। क्यों? लितासबू मिन अल किताब, ताकि तुम समझो कि ये किताब में से ही पढ़ रहे हैं, ये किताब का ही हिस्सा है। वह मा हुआ मिन अल किताब, हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं है। وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے نازل کردہ. وہ ما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہوا. وہ یقولون علی اللہ الکذب، وہ دیکھو لوگوں نے اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ کے اوپر بھی جھوٹ باندھتے ہیں. وہ ہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے زبان کو مروڑنا؟ دیکھیں اصل میں ایک ہوتا ہے فزیکلی مروڑنا، فزیکلی مروڑ کے اس کا ایسا میننگ، ایسا اس کو ادا کرنا کہ کچھ سے کچھ ہی سمجھ آئے. جیسے ہم نے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، وہ رائنا نہیں، رائنا کہتے تھے. رائنا مطلب میری، ہماری طرف توجہ کریں، جیسے ایکسکیوز می کہتے ہیں، ہماری طرف ذرا توجہ کریں، اور رائنا کر دیا تو اب میرا چرواہا بن گیا. تو اصل میں ایک ریڈیکیول کرنے کے لیے، حقارت کے لیے، ایک ذرا مذاق اڑائیں ان کا، تو میرے چرواہے ذرا ادھر دیکھ، ایسے ایسے مطلب کرنا کہ دوسرے کو پتا بھی نہ چلے، کچھ کہہ بھی نہ سکے. اگر کوئی کہے گا آپ نے یہ کہا، نہیں آپ اپنا ہی کچھ علاج کرائیں، کانوں کا لگتا ہے آپ کو نہیں صحیح سنا، ہم نے تو رائنا کہا تھا. السلام علیکم نہیں کہنا، سام علیکم کہنا. سام مینس موت، موت ہو تیرے اوپر. تو وہ زبانوں کو ٹوسٹ کر کے بھی ایسی باتیں کرتے تھے، یہ ان کی عادت تھی. اور دوسرا مانوی طور پہ، مانوی ٹوسٹ کرنا، یعنی لفظ تو نہیں بدلے لیکن ایسے بیان کرنا کہ جیسے یہ معنی ہی تبدیل کر دینا کہ یہ اس کا معنی یہی ہے اللہ کی طرف سے. تو زبان ضروری نہیں کہ فزیکلی مروڑنا، فزیکلی اس کو کچھ ٹوسٹ دینا، بلکہ اس طرح سے کتاب کو پڑھتے تھے کہ ایسا لگے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بات کتاب میں ہوتی ہی نہیں تھی، ایسے نہیں ہوتی تھی. ایسا اسلوب، ایسا انداز کرنا، ایسے خلط ملط کر دینا کہ لوگ سمجھے کہ کتاب ہے. مثلاً آیت پڑھ دی تورات کی، عبرانی میں تھی تورات، ہیبرو میں، اور تشریح کر رہے ہیں عربی میں. صحابہ آ کے سنتے ہیں جب ان سے، تو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ وہ تورات عبرانی میں پڑھتے ہیں اور پھر ہم سے عربی میں تشریح کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا بات کہہ رہے ہیں. مطلب اب مثال کے طور پہ ہمارے لوگوں کو عربی نہیں سمجھ ہے، عربی کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اس کے بعد تشریح جو مرضی اردو میں کر دو، ان کو بیچاروں کو کیا پتہ کہ کیا ہے، وہ تو یہی سمجھیں گے یہ اسی کی تشریح کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ان کی تصدیق کرو نہ تردید کرو، بس. تو یہ ان کا طریقہ تھا. آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی وہ لفظی تو تحریف نہیں کر سکتے، لفظوں میں تو چینج نہیں کر سکتے، مگر معنی کو چینج کرتے ہیں. عربی پڑھی اور اس کے بعد بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہے، وہ ایسی لے میں پڑھتے ہیں نا، ایسی لے میں پڑھ رہے ہیں جیسے کہ ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں اس کا، اور وہ ایک خاص ٹون اپنی اپناتے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ہی اپنے بھی الفاظ جوڑ دیتے ہیں. اب سننے والا تو سمجھ رہا ہے کہ یہ قرآن سے ہی پڑھا جا رہا ہے، قرآن کا ترجمہ ہی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی دیکھو کیسے اس کو ٹوسٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ کتاب میں یہی ہے. اور یہ ہمارے ٹیچر نے بیان کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر اپنے کانوں سے نہ یہ بات سنی ہوتی تو میں نہ کبھی بلیو کرتا. کہنے لگے کہ ایک کسی کو بیان کرتے ہوئے سنا، کسی مولوی صاحب کو، وہ تقریر کر رہے تھے 27ویں شب کو رمضان کی، اور وہ اپنی سپیچ میں کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتی ہیں، روح بھی نازل ہوتی ہیں، اور اس سے روح سے انہوں نے کیا کہا، دیکھیں لکھا ہوا ہے روح، ملائکہ بھی ہوتے ہیں اور روح بھی ہوتی. اب وہ تشریح کیا کر رہے ہیں سوچیں، وہ کہہ رہے ہیں جو روح ہے نا آپ کے فوت شدگان کی، وہ آتی ہیں پھر اس رات میں، آپ کے نانا دادا یہ فلاں فلاں، تو وہ جو آپ کے سارے فوت شدگان نے آنا ہے، تو جب وہ آپ کے گھر آئیں گے تو مہمان گھر پہ آتا ہے تو کھانا تو پکا ہونا چاہیے نا، تاکہ وہ روحیں آ رہی ہیں آپ کے گھر، تو آپ کے گھر میں اس رات کو اہتمام ہونا چاہیے. اب وہ غریب جو بےچارا یہ سن کے جائے گا، گھر جا کے کھانا پکائے گا، وہ تو یہی سمجھ رہا نا قرآن میں یہ ہے کہ اس رات میرے گھر روئیں آنی. تو یہ بھی دیکھیں، آج مسلمان بھی اپنے جو غلط عقائد ہیں نا، وہ انہیں اسی قرآن کی آیات سے ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہم کہیں اور سے لا رہے ہیں، وہ کہتے قرآن کے اندر ہے یہ، قرآن کے اندر کیا پھر ایسا اس کو ٹوسٹ کریں گے، اس کے معنی کو ایسا کریں گے کہ وہ انسان کو سمجھ آئے گا کہ یہ پتہ نہیں صحیح بتا رہے ہیں. اپنی سوچ یا جو بھی اپنا مسلک ہے، جو بھی اپنا عقیدہ ہے، اس کے مطابق اس کو ٹویسٹ کر دیں گے. یہ بھی کیوں کرتے تھے یہودی؟ یا تو یہ ہوتا تھا کہ اس حکم پہ عمل ہی نہیں کرنا، इसलिए कर देते थे, या अगर किसी को फायदा पहुंचाना है तो आप किस तरह उसको ट्विस्ट कर दिया और उसको फायदा दे दिया। बड़े बड़े लोग इनके पास आते थे, कोई इसमें से कोई फतवा बताएं हम, तो अब वो अपने मनमाने माने बनाने के लिए ना, कि जैसे हमारी मर्जी है, उसके लिए भी किताब को यूज करते थे। तो आज मुसलमान नहीं क्या यूज कर रहे, हर गलत अकीदा इसी किताब से यूज करके बताते। अब ये ईसा अलैहि सलाम की आमद के बारे में तवातुर से हदीस है, तवातुर से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही फरमाया कि ना उनको उन्होंने कत्ल किया, ना उनको उन्होंने सूली चढ़ाया, लेकिन शुबे में अल्लाह ने डाल दिया, फिर भी कहते हैं कि नहीं, उनको मानते ही नहीं है, कहते नहीं वो तो उन्होंने आना ही नहीं, आप इंतजार करते रहे, उन्होंने नहीं आना। अब हदीस को भी रद्द और कुरान की तो कोई बात को मानना ही, और इसके अलावा हजार चीजें इसी तरह। ग्यारहवीं के लिए, ग्यारहवीं के लिए, ग्यारहवीं दिलाई जाती थी, तो किसी कोई एक बंदा गया मौलवी साहब के पास, उसने कहा जी लोग हमें बड़ा कहते हैं कि ये तो दीन में है ही नहीं है, तो आप ग्यारहवीं का कोई सबूत मुझे दें कि कुरान से कोई लाए। उसने कहा कुरान के अंदर साफ ये तो लिखा हुआ है कि ग्यारहवीं है। उसने कहा मुझे कोई बता दे ताकि मैं उनको जाके बता दूं। उसने कहा ये देखो तो, वल फजर व लयालिन अशर, तो फजर एक, लयालिन अशर दस, दस और एक कितनी हुई, ग्यारह, तो ग्यारहवीं का सबूत नहीं हुआ। इस कुरान को यूज करते हैं, और जब आपको कुरान का नॉलेज नहीं होता ना, और हम बेपढ़े हुए, वो किसी ने भी कुछ बता दिया और ढाई सिपारे राहदारी के हैं, ढाई सिपारे पढ़ो ये राहदारी उसको मिल जाएगी मुर्दे को, वो क्या राहदारी मिलेगी, उसने पूरी जिंदगी कुरान ना खोला, आप उसको राहदारियां दे रहे हैं, कहां से ढाई सिपारे सूरह बकरा को ढाई सिपारे क्या के, भाई ढाई सिपारे पढ़ोगे तो वो आगे उसकी आसानी हो जाएगी, कहां से पता चला, कोई उसका नहीं, वो दुनिया से चला गया, उसने तो कलमा पढ़ा नहीं, आप लोग सारे पीछे कलमा पढ़े। इन्हीं कुरान हदीस इन्हीं चीजों से निकाल निकाल के अपने गलत अकीदों को प्रमोट करते हैं। कोई नहीं ये कहता कि मैंने खुद से बनाया हुआ, सब कहीं ना कहीं कुरान से ही निकाल के ले आएंगे, मनमानी तशरी करेंगे, तो फिर क्या करें, फिर हम कहां से तशरी लें, हमने कहां से तफसीरें लेनी है बताएं, मेरे से लेंगे, उससे लेंगे, उन स्कॉलर से लेंगे, किसी से भी नहीं लेंगे। आपको पता है कुरान की तफसीर कहाँ से लेंगे, कुरान की तफसीर कुरान से ही आती है, एक जगह अगर कोई अहम बात होती है वही दूसरी जगह भी उसके ऊपर आयत आती है। नंबर टू, हम हदीस से देखेंगे कि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे एक्सप्लेन किया, क्या इस आयत को इसी तरह एक्सप्लेन किया कि वल फजर व लयाल नाशर, उन्होंने भी क्या कहा था कि ये ग्यारहवीं है, फिर सहाबा ने इसको कैसे समझा, सहाबा ने इसके ऊपर कैसे अमल किया, ताबईन ने इसको कैसे लिया, ये है बस, ये खैरुल कुरून थे, बेहतरीन जमाने के लोग थे। उसके बाद क्या है? आज कोई खड़ा होकर कहते नहीं इस आयत का ये मतलब है, तो ये नहीं है सही, हम मन माने माने नहीं कर सकते, हम कुरान को समझेंगे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया, और सब महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पे कुरान महफूज है ना इसकी तफसीर भी महफूज है, और वो हदीस की सूरत में है, सहाबा के अकवाल की सूरत में, लेकिन जिस वक्त मुनकरी ने हदीस खड़े हो गए और उन्होंने कहा हमने तो हदीस को मानना ही नहीं है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर जो मर्जी तफसीरें करो कुरान की, फिर क्या है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, इस आयत को जहां से मर्जी उठा के जो मर्जी माना पहना दो। तो समझा करें, आंखें खोल के चलें इस दुनिया के अंदर, इसमें बहुत फितने, बहुत फितने, ये जो आज भी इस तरह के लोग प्लांट किए जाते हैं कि जाओ मुसलमानों के अकीदे को खराब करो, आज भी ऐसे लोग हैं जिनका एजेंडा सिर्फ ये है, उनकी फंडिंग कहीं और से होती है, उनके उनका काम यही है लोगों के अंदर अकीदे उनके खराब करना, और हम इतने मासूम और भोले भाले बन जाते हैं कि बस जिसने अल्लाह रसूल का नाम ले लिया ना हम उसकी मजलिस में बैठ गए, कोई ना पता है ना ता है ना कुछ है, बस कोई जो भी लह लह के कुछ सुना रहा है, या जो भी कोई चाहे झूठे वाकयात झूठी चीजें सुनाता जा रहा है, लेकिन बस वो बोलता बहुत अच्छा है तो इसलिए हम उसको सुनते, कोई पता भी करते हैं इसका अकीदा क्या है, कोई पता भी है ये सही कुरान से या हदीस सही से बता भी रहा है या नहीं, क्या कोई पता भी है कुरान की, जिस तरह से उस हद आयत की इंटरप्रिटेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाई है, क्या उसके मुताबिक भी कह रहा है या अपनी ही बता रहा है? लेकिन आज क्या देखा जाता है, जो बोलने में बस अच्छा है ना, बस मजा आता है इसका सुन के, वो कोई कहानियां बड़ी सुनाता है, बस उसके पास बैठ जाएंगे, चाहे वो आपके अकीदे को बिगाड़ के रख दे। नॉलेज ने, खुद खुद नॉलेज ने, खुद आपको पता होना चाहिए, खुद समझ आनी चाहिए कि ये क्या कह रहा है। जब आपके पास नॉलेज आ जाता है ना, 1 मिनट में, यकीन जाने 1 मिनट में आपको पता चल जाता है जो बैठा हुआ बोल रहा है ना, इसके पास इल्म कितना है और कहाँ से बात बता रहा है, 1 मिनट में पता चल जाता है। लेकिन जब आप कोरे होते हैं तो फिर बस इधर उधर धक्के ही खाते हैं, अंधों की तरह, जैसे अंधे के पास कुछ नहीं, टकरे मारता फिरता है, इसी तरह टकरे मारते हैं। जिसको YouTube में उठाया सुन लिया, बस उसके मुताबिक फिर सोचने में पड़ गए, हाँ ये ठीक ही कहता होगा ना, अगर इसके इतने फॉलोअर्स हैं, ये YouTube और ये तो हमारे दीन के सोर्सेज रह गए आज, इनसे हम बस वो करते हैं। तो नहीं, ऑथेंटिक जगह से लो आप इल्म, देखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बताया इसको, उन्होंने कैसे समझाया। अब ये नहीं कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से कुरान की इंटरप्रिटेशंस करते रहे, ये गलत है। और यही तहरीफात उन्होंने देखें की, उन्होंने लफ्जी भी की, उन्होंने मानवी भी की। हमारे पास लफ्जी के ऊपर तो चारा नहीं है, उस पर तो हमारा जोर इसलिए नहीं चलता कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। मानवी को हम तरोड़ते हैं मरोड़ते हैं, क्योंकि हमारे लोग अरबी नहीं जानते। इसीलिए जरूरी है कि आप तर्जुमा सीखें, आपको तर्जुमा पता होना चाहिए, आपको एक एक लफ्ज का माना पता होना चाहिए। हम उसकी तरफ आते नहीं है, इसको बहुत समझते हैं, तभी तो वो कोई किधर से किधर ले जाता है, क्योंकि वो अपना ही माना बना लेता है। मा कान अली बशर अन युतियाहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुवता, किसी बशर के लिए जायज नहीं, उसके शायाने शान नहीं है कि उसको अल्लाह ने किताब दियो, हकूमत या हक हिकमत दियो और नबुवत दियो, यानी कोई नबी है, उसके पास किताब भी आई है, हिकमत भी आई है, और वो जाहिर है, वो मा काना ली बशर नहीं है किसी बशर के लिए, इसका मतलब है बशर को ही किताब मिली है, बशर को ही हिकमत मिली है और बशर को ही नबुवत मिली है। किसी बशर को, जिसको भी किताब हुकूमत और नबुवत मिली है, उसके लिए ये जायज नहीं है कि वो कहे लिन्नास, लोगों से, कूनो इबादन ली मिन दूने ला, तुम मेरे बंदे बन जाओ, अल्लाह को छोड़ो, तुम बस मेरे मुरीद बनो, तुम मेरे फॉलोअर बनो, मैं ही मैं हूं, मैं खुद ही अल्लाह के पास तुम्हारी सारी बातें पहुंचा दूंगा, तुम्हें नहीं जरूरत अल्लाह के तक पहुंचने की। हाँ नहीं, वो शख्सियत परस्ती कराए, अपना बना ले, किसी नबी ने ऐसा नहीं किया। ये इस आयत का ना एक शाने नजूल है, बड़ा दुख सा भी हुआ ये पढ़ के भी ना, कि क्या शाने नजूल है, कि जब ये यहूदी, जाहिर है ये मैंने आपको बताया कि ये लोग भी आ जाया करते थे, जब ईसाई वहां पे जितने दिन उनका वफद रह रहा था, तो उनका एक यहूदी आलिम आया, तो कहता है जब सारी बातें सुनी ना ईसा अलैहि सलाम के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम ने क्या बताया क्या किया, तो कहने लगा अच्छा आप फिर ये चाहते हैं कि जैसे ईसाई ईसा को पूछते हैं, तो अब ईसा को छोड़ के अब आपको पूछना शुरू करते हैं। अल्लाहू अकबर, ये सवाल सुन के ना तो ईसाई भी यही बोलने शुरू कर कि तो फिर आप ये चाहते हैं कि हम उनको छोड़ें तो हम आपको आपकी पूजा शुरू कर दें। तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि किसी नबी ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, ऐसा कभी चाहा ही नहीं, किसी नबी जिसको नबुवत भी मिली, किताब भी, हिकमत भी, नहीं, कभी नहीं उन्होंने कहा, उनके शान के लायक ही नहीं है कि वो ये कहें कि मैं ही हूं, बस मेरे बंदे बन जाओ, अल्लाह को छोड़ो। बल्कि वो तो कहते थे कूनू रब्बानी ना, तुम रब वाले बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। किस लिए? बीमा कुन तुम तो अल्लीमून अल किताब, बवजह उसके जो थे तुम सिखाते किताब को, वह बीमा कुन तुम तदरुसून, और बवजह इसके जो तुम पढ़ते थे, इसकी वजह से तो तुम रब्बानी बन जाओ। उनका ये लोगों को पैगाम होता था, वो लोगों को इस तरफ लाते थे। तो एक तो यहां से ये पता चला कि ईसा अलैहि सलाम भी बशर थे, नबी अलैहि सलातो सलाम से भी बशर थे, इसलिए फरमाया मा काना ली बशर, किसी बशर के लिए, और इसका मतलब तमाम अंबिया बशर थे, जिनको भी नबुवत मिली सब बशर थे, और किसी ने भी नहीं ये कहा कि मेरे बस बन जाओ। उन्होंने अल्लाह से लोगों को जोड़ा, उन्होंने कहा अल्लाह वाले बन जाओ, ये तो अपना अपना बना लेना का मतलब यही है कि कोई इंसान कहे बस मेरा बन जाओ, जो डिपार्टमेंट है या जो मुल्क का कानून है उसको छोड़ो, फिर मैं खुद ही टेक केयर कर लूंगा, बस तुम मेरे बनो, मेरी पूजा शुरू करो। या आज जैसे बाज लोग अपने कुछ ऐसे ऐसी चीजें दिखाते हैं, अपने शोभदे ही होते हैं और क्या होता है, ऐसी चीजें लोगों को दिखाते हैं और फिर उनको कहते हैं बस वो अब हमारे ही मुरीद बन जाए, हमारे इर्द गिर्द खड़े हो जाए, हमारी सेवा करें, बस ठीक है, हम जो भी करना होगा आगे अल्लाह के साथ डीलिंग हम खुद ही कर लेंगे, तुम बस हमारे मुरीद बन के रहो, तुमने हमारी खिदमत करनी है। तो किसी नबी की ये शान नहीं, जिसको अल्लाह ने मौजे अता किए हैं, जो इसको अल्लाह ने नबूवत दी, किताब दी है, वो अपने लायक ही नहीं समझता कि वो कहे कि लोगों मेरे बस बन जाओ, वो तो कहता है अल्लाह वाले बन। देखिए इससे पता चलता है अगर नबियों ने नहीं ये कहा तो नबियों के बाद वो कौन सा टीचर, कौन सा इमाम, कौन सा पीर, कौन सा कोई कोई जो अपने आप को कुछ भी कहता है, वली, कोई शेख, कोई फलां, वो कहे कि मैं मेरे बन जाओ, बस मेरी ही तारीफें, मेरे ही गुण गाओ, मैं ही मैं हूं सब कुछ, आपने बस मेरा ही बन के रहना। नहीं, असल वो है कि वो इंसान अल्लाह के साथ जोड़ने वाला बन जाता है। रब्बानी कौन होता है? रब वाला, एक तो ये माना है इसका। और वो जो लोगों की तरबियत करता है, सिर्फ खुद नहीं रब वाला बनता, लोगों की तरबियत भी करता है, लोगों को भी अल्लाह से जोड़ता है। और इसलिए कि तुम किताब को पढ़ते हो, इसलिए कि तुम पढ़ाते हो, सिखाते हो किताब को और पढ़ते हो, यानी किताब को पढ़ने का भी मकसद ये होना चाहिए कि लोगों को रब्बानी बनाए, कह लोगों को अल्लाह से जोड़े, लोगों को अपने साथ ना जोड़ के बिठा दे, लोगों को अल्लाह की मार्फत दे, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करें, अल्लाह का खौफ पैदा करें, ये कोशिश करें कि अल्लाह वाले बने, ये अल्लाह के साथ जुड़े। तो किताब की तालीम को यही तो मकसद है, अगर ये नहीं मकसद पाया तो फिर क्या किया, अपने ही बस बनाते रह गए। ठीक है, हमें भी अपना ये मकसद रखना कि मैं रब्बानी बन जाऊं। रब वाला कौन होता है, रब्बानी कौन होता है, ये कैसे कोई लफ्ज नहीं है कि बस एक ऐसे कोई टाइटल मिल जाना मैं रब्बानी बन गया। रब वाले का मतलब क्या है, ये एक मोमिन की शख्सियत को डिपिक्ट करता है रब वाला। रब्बानी इंसान वो है जो हनीफ होता है, हनीफ से पहले हमने पढ़ा था, किसी तरफ का नहीं होता, एक डायरेक्शन में होता है। देखिए हर एक की जिंदगी का कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, जो रब्बानी होता है ना उसकी एक ही डायरेक्शन है, उसका जहन बस उसी तरफ सोचता है, उसका अमल उसी तरफ होता है, वो बोलता है तो उसके मुंह से वो ही बातें निकलती हैं जिस डायरेक्शन की तरफ वो जा रहा है, जो उसकी जिंदगी का गोल या उसकी जिंदगी का एक महवर है, सेंटर है। रब्बानी की जिंदगी का सेंटर अल्लाह की जात होती है, पूरी की पूरी जिंदगी का रुख उसकी तरफ होता है, सोच है, अमल है, कोई एक्टिविटीज हैं, सब एक डायरेक्शन में ही है। ठीक है, सब एक्टिविटीज एक अल्लाह के लिए है, उसका बोलना भी अल्लाह के अजमत के एहसास के साथ होता है। तो ये होता है गॉड ओरिएंटेड जिंदगी जिसको कहते हैं, रब वाली जिंदगी, वो रब्बानी वो होता है, हर तरफ से फोकस्ड होके अल्लाह से जुड़ जाए, वो होता है रब्बानी। तो वो तो ये कोशिश करते रहे कि लोग रब्बानी बन जाएं, वो ये कब कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ो, वो ये कब कहते हैं कि हम ही हमें हमारे बस मुरीद बनो। इसलिए यहां से हमें पता चला कि पैगंबरों ने भी ये काम नहीं किया, पैगंबरों के बाद किसी के लिए जाए। जब आपने तालीम देनी उनको अल्लाह के साथ जोड़, अपने आप को ना बड़ा बड़ा बना बना के उनके सामने पेश करते हैं कि मैं ही बड़ी चीज हूँ, मैं देखो कितनी नेक, मैं देखो कि ये आपके बस हर वक्त आपके गुण गाते रहे, अल्लाह को तो भूल जाए, यही है सब कुछ, यही हमें बस वहां पे भी बख्शवाएंगे, यही हमें सारा हमारा कराएंगे, यही अल्लाह के सामने हमारी दुआएं भी कर देंगे, यही सब कुछ है। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मेरी शान में मुबारक ना किया, एग्जैजुरेशन ना करो, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लायक हैं कि आपकी तो तारीफ की जाए, लेकिन फरमाया मेरी शान में एग्जैजुरेशन ना करो, मुबालगा ना करो, जिस तरह ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में मुबालगा किया। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ और उसका भेजा हुआ हूँ,
तो तुम भी कहो कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और उसका भेजा हूं, तो देखिए हमारा अकीदा कितना उन्होंने सही कराया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अल्लाह के बंदे हैं, तुम भी बंदे बनो। अपनी उम्मत को भी यही सिखाया, और लोगों को भी बुलाना है तो अल्लाह की तरफ बुलाओ, अपनी तरफ ना बुलाओ। ठीक है, जैसे कि तुम सिखाते हो किताब को और जो तुम पढ़ते हो किताब में, तो उसके बाद क्या है, अल्लाह की पहचान, वला यामुरकुम अन तत्तखिदुल मलाइकत वन नबीयीना अरबाबा, और नहीं वो हुक्म देता तुमको कि तुम बना लो फरिश्तों को और नबियों को रब, ना ही वो ये हुक्म देता है जो बशर होता है ना, जिसको भी अल्लाह ने नबूवत दी होती है, वो ये नहीं कभी कहता कि तुम फरिश्तों को कोई रब बना लो। तुम रब कौन होता है, मालिक, पालने वाला, रोजी देने वाला, निगहदाश्त करने वाला, इंसान की जरूरियात पूरी करने वाला, वो रब है। ठीक है, तो वो ये नहीं कहता कि फरिश्ते हैं रब या नबी रब है या मुझे रब मान लो, बल्कि वो तो अल्लाह के साथ जोड़ता है, ना मलाइका की पूजा के लिए कहता है ना नबियों की, जैसे ईसाइयों ने कर लिया। आया अमुरुकुम बिल कुफरी बादा इद अंतुम मुस्लिमून, क्या फिर वो हुक्म देगा तुमको कुफर का, खुद सोचो, ये इस्तफा में इनकारी कहलाता है। इस्तफा में इनकारी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ही निगेशन छुपी हुई है, इनकार छुपा हुआ है। यानी जैसे आपको कहूं कि क्या भला मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी, अब ये जब अब हम कहेंगे क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी, तो मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही, इसके अंदर ही जवाब है कि नहीं मैं तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहूंगी, ऐसे ना। तो यामुरुकुम, वो तुम्हारा बुरा चाहेगा, वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा, इसके बाद के तो मुसलमान होगा क्या, आपके नबी का ये काम होगा कि अब तो वो कह रहे हैं ना बैठे हुए कि जो है ना, आप क्या ये चाहते हैं कि फिर हम ईसा अलैहि सलाम को छोड़ के फिर आपकी इस तरह पूजा शुरू कर दें। असल में अल्लाह ताला माफ करे कि कितना, यानी दुख इस बात पे होता है कि कितना ज्यादा दूसरे की इंटेंशन को मिसकैलकुलेट किया और उसके ऊपर कितना बड़ा एक इल्ज़ाम सा लगा दिया, जो इंसान इतनी सिंसेरिटी से काम कर रहा हो और उसको ये कह देना कि अच्छा तो आप ये चाहते हैं फिर, या असल में तो आपको मानना जाए, फिर आपकी पूजा शुरू कर दी जाए, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो तुम्हें क्या कुफर का हुक्म दे, इसके बाद के तुम मुसलमान हो जाओ, वो तुम फिर उसके बाद मुसलमान करके कहेगा आप मेरी पूजा करना शुरू कर दो, उनकी छोड़ो, आप तो मुसलमान इसलिए हो कि मैं मेरी इबादत करो, मेरे आगे सजदे करो, क्या वो ये करेगा, तुम्हें क्यों इस तरफ वो लेकर जाएगा। तो ये इस्तफा में इनकारी है, इसके अंदर ही पता चलता है कि कोई नबी ऐसे नहीं करता, किसी नबी ने इस तरफ की दावत नहीं दी, किसी नबी ने ऐसा नहीं किया कि लोगों को ऐसी बात कहे, और इसी से पता चलता है कि ईसा अलैहि सलाम ने भी ऐसा नहीं किया, किसी बशर के लिए लायक ही नहीं है, ये जो इन्होंने बनाई हुई ये झूठ बात है, ये झूठ बात है, ईसा अलैहि सलाम के ऊपर इल्जाम है कि ये कह रहे हैं कि वो ही नाउजु बिल्ला कह के गए कि मैं कोई अल्लाह का बेटा हूं, या मेरी इबादत करो, या मेरे आगे झुकना, या मेरे आगे इबादत करना, हाथ जोड़ना और सजदे करना और रुकू करना, ये वो नहीं कह के गए, कोई नबी ऐसा कह ही नहीं सकता, वो तो लोगों को अल्लाह से जोड़ने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना एहतियात करते थे ना, इतनी एहतियात करते थे कि इतनी भी चीज को गवारा नहीं करते थे कि मैं आऊं तो लोग खड़े हो जाए मेरे लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों में बैठे होते थे, पता नहीं चलता था कि कौन से अल्लाह के नबी हैं। किसी ने आगे कहा आप दाता हैं, आप देने वाले हैं, हालांकि क्या तब देने वाले हैं, जो भी आपके पास चीजें आती हैं तो आप आगे बांट देते, नहीं फरमाया नहीं मुझे ये ना कहो, दाता सिर्फ अल्लाह है, मैं तो कासिम हूं, तकसीम करने वाला हूं बस। इतना सा भी अपने लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया कि कोई मेरे लिए ऐसी बात करे, झुकना आपके आगे तो दूर की बात है। सहाबा ने चाहा था, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह हम देखते हैं, बाज़ मुसलमानों ने आके कहा था कि वो दूसरी जगहों पे कि लोग अपने बादशाहों के आगे झुकते हैं, सजदे करते हैं, तो आप हमें इजाजत दें हम भी आपको सजदा करें। जिसको भी बताया गया कि ये भी इस आयत का शान नजूल, एक ये आयत नाजिल हुई इस वक्त, कि ये भी फतरुल कदीर में कि ये भी हो सकती थी इसकी, इसका शान नजूल ये भी बयान किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गवारा नहीं किया, फरमाया किसी को सज्दा जायज नहीं है। हालांकि अगर इंसानों के अंदर सबसे अजीम जात है कोई, वो नबी अलैहिस्सलाम की है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए
ये गवारा नहीं किया कि कोई झुके या कोई खड़ा हो मेरी मेरे लिए मेरी ताजीम में, या कोई मुझे ऐसे कोई लफ्ज बोले जो अल्लाह के लिए हो। इतनी सी चीज को भी नहीं पसंद किया। तो जिसको भी नबुवत मिलती है वो कभी ऐसा नहीं करता, ये वो लोगों को अपने से जोड़ने लगे, वो अल्लाह से जोड़ता है। ये अलग बात है कि अल्लाह से जोड़ने की वजह से लोगों को उनसे मोहब्बत हो जाती कि इन्होंने हमें अल्लाह का रास्ता दिखाया, मगर जात असल अल्लाह की ही रहती है। ये नहीं कि लोग उसको ही परस्ते शुरू कर दें और उसकी तस्बीहां पढ़ने शुरू कर दें। और आज तो लोग ऐसे हैं, अल्लाह अगर मैंने ये वीडियोस ना देखी होती तो मैं कभी ना इसके ऊपर यकीन करती कि मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो कि अपने आगे सजदे करा रहे हैं लोगों से, कि लोग आते हैं और उनके आगे सजदा करते हैं, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं अदब के साथ, एक तरफ जैसे नमाज में हम हाथ बांधते इस तरह हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, और वो तो अपने आगे सजदे करा रहे हैं और फखर से बैठे हैं। क्या फर्क हुआ फिर इनके अंदर और एक मुशरिक के अंदर, क्या फर्क रहा? बाकायदा पूरे जमीन के ऊपर अपने माथे टेक रहे हैं लोग, ये जिंदा इंसान कुर्सियों पे बैठे हैं। हमारे नबी ने नहीं ये कराया, तुम्हारी कैसे ये शान हो गई कि तुम इतनी बड़ी चीज हो गई कि तुम ये करा रहे हो लोगों से? तो आंखें खुलती है ना ये आयतें पढ़ के, पता चलता है ना कि कहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर उसके बाद फिर कोई वरगला नहीं सकता कि हाँ नहीं ठीक है तुम्हारे तो दीन के अंदर यह है तो मुझे भी पूजो इस तरह, कोई नहीं कर सकता। फिर जब ये साफ बता दिया गया, नबियों ने नहीं, किसी नबी ने नहीं ये किया, कौन उनके बाद ऐसी बड़ी शान वाला हो सकता है जो ये करा रहा है? अल्लाह ताला हमें सही फहम अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे अकीदे दुरुस्त फरमा दे, अल्लाह हमें हर उस चीज से महफूज रखना, हर उस अमल से जो तेरी नाराजगी का बायस बने। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिलावत सुने।
وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون